अभी हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता मोहन सिंगल भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आप यूपी की धरनी देहरादून से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, साकार मम्मा बाबा के रहते 1962 में आपको यह ज्ञान मिला और तब से ही आप सेवाओं में संलग्न हो गए। आसाम, बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में आप सेवा केंद्र खोलने के भी निमित्त बने और आपके साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही। 1967 में आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद ONGC को ज्वाइन किया और लगभग 28 वर्षों तक ONGC में अलग अलग कैपेसिटी से अलग अलग स्थानों पर आप सेवाएं देते रहे और 1996 में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। उस समय आप जियो फिजिसिस्ट थे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जियोफिजिसिस्ट। उस रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे थे लेकिन चूंकि ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हो चुका था, वहां एकेडमी कोऑर्डिनेटर की जरूरत थी, तो आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया अपनी जॉब से और आकर के ज्ञान सरोवर के एकेडमी के कोऑर्डिनेटर का पदभार संभाला जो आज दिन तक संभाल रहे हैं। 1985 में आप यूथ विंग के सेक्रेटरी रहे और उस दरमियान आपने 12 पदयात्राओं का आयोजन किया, युवा पदयात्रा, और उसके बाद 1988 में आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने। वर्तमान में तो आप इस विंग के चेयरपर्सन हैं। आपने कई सारी एग्जीबिशंस का निर्माण किया है और कई सारी पुस्तकों का लेखन भी किया है। आपने नेशनल लेवल पर पर्यावरण श्री का अवार्ड भी प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, कई इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने अवार्ड प्राप्त किए हैं। और बहुत सुंदर ज्ञान का मनन चिंतन। लेकिन आज तो जैसे कहा कि मम्मा और बाबा की पालना ली हुई है, तो वो मम्मा बाबा के साथ के अनुभव हम सबके बीच में शेयर करेंगे आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। एक बार हम सब मिलकर उस रीति से ओम शांति कहेंगे जैसा हम सबने सुना है यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ मिलकर सभी ब्राह्मण वश जो यज्ञ में रहते थे ओम ध्वनि किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे अंदर और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ शांति ही वास्तव में हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आधारशिला है। आप सभी बाबा के पुराने बच्चे हैं, जानते ही हैं, और वैसे भले लौकिक रीति से बहन जी जैसा परिचय दे रहे थे, लौकिक रीति से कोई भी कार्य करते हैं तो फिर गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन वगैरह, पब्लिक बॉडीज से रिकॉग्निशन होता है तो अवार्ड मिलते हैं, ये साधारण बात है, कोई नई बात नहीं। लेकिन जो वैसे बहन जी ने इंडिकेशन तो दिया, हाँ, जो सबसे बड़ा अवार्ड हमें मिला है, हाँ, कौन सा? साकार बाबा मामा के साथ रहने का, बाबा के को बहुत करीब से देखने का, और अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी 1969 में मधुबन में बाबा ने बुला लिया था, बहुत दूर, हाँ, इंजीनियरिंग पास करने के बाद पोस्टिंग आसाम में हुई थी और ONGC में, तो आसाम से बाबा ने जैसे युक्ति से बुला लिया तो दो दिन वो अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्थिति ब्रह्मा बाबा की जो अपनी आँखों से देखी, तो उसको खास हम शेयर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबका भी लक्ष्य कर्मातीत बनने का है, फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त करने का है, और एक चीज जो देखी हुई हो अपनी आँखों से, अनुभव की हुई हो, तो वो थोड़ा सहज हो जाती है सुन करके, और अगर खास किताब में पढ़ाई हुआ हो या किसी से सुनाई हुआ हो तो फिर भी उसमें कठिनाई का अनुभव हो सकता है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे बाबा का एक एक जो पुरुषार्थ था, लौकिक हो या अलौकिक हो, तो वो किस प्रकार से संपूर्णता की तरफ था, हम सब ने सुना भी है, पढ़ा भी है, और हमें जैसा बहन जी परिचय दे रहे थे, जब हम लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रहे थे 1962 में इंटरमीडिएट पास किया था, और बाबा जैसे कहता है ना, जब भक्ति का अंत होता है तो वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। तो लगता है हमारे साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि 62 तक तो जैसे लौकिक साधारण जीवन होता है, और 62 के छुट्टियों के बाद 61 में इंटरमीडिएट किया, और 61 के बाद फिर अपनी लौकिक माता जी को तीर्थ यात्रा कराने के लिए, जैसे बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, उधर सब जाना हुआ, क्योंकि हमारी लौकिक सिस्टर और उनके हस्बैंड जीजाजी यानी वहाँ पोस्टेड थे, वो मेडिकल ऑफिसर थे उस पूरे क्षेत्र के, इसीलिए ये पिकनिक ज़्यादा थी और तीर्थ यात्रा तो कम कहे, क्योंकि पूरी सुविधाओं के साथ वहाँ पर जाना हुआ। लेकिन कहा तो यही जाएगा क्योंकि गंगोत्री, जमुनोत्री वगैरह ये जितने स्थान हैं, ये पवित्र चार धाम में ये सब जो आते हैं, तो ये देखने का। और जैसे ही वहाँ से लौटे और उसके कुछ महीने बाद ही फिर ईश्वरीय ज्ञान लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन कर रहे थे, वहाँ पर प्राप्त हुआ। तो ये तो थोड़ा सा समय की जानकारी। और वहाँ पर उस समय कानपुर में साकार ब्रह्मा बाबा का आगमन हुआ। लखनऊ कानपुर तो पास पास जगह हैं, 2 घंटे का रास्ता है। तो कानपुर में जब बाबा का आगमन हुआ, पहले बाबा मामा जैसे आप सबने सुना भी होगा, सब तरफ जाते थे, तो कानपुर में बाबा आए तो लखनऊ तो पास था, तो वहाँ लखनऊ वालों ने कार्यक्रम बनाया कि सब कानपुर चले। हम भी तैयार हो गए, और इस प्रकार से एक दिन सब को कानपुर जाना हुआ। ये है 1962 या 63 की बात होगी, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन 62 एंड की बात हुई। और तब तक ज्ञान में चलते हुए कुछ महीने हो गए थे, लगभग 1 वर्ष जैसा भी कह सकते हैं। तो जब कानपुर पहुँचे तो बाबा के पास वास्तव में प्लान तो था सुबह ही जल्दी निकल करके वहाँ पहुँचेंगे बाबा के पास सभी लोग, लेकिन दिसंबर जनवरी का कुछ महीना था, बहुत ठंडी के दिन थे, कोहरा था, विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, सड़क भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो पहुंचते हुए लेट हो गया। तो जब वहां पहुंचे तो बाबा की मुरली तो समाप्त हो चुकी थी, और जब पहुंचे तो मुरली के बाद बाबा जैसे चिटचैट करते हैं, चैम्बर जिसे बोला करते थे, बाबा सबके साथ बैठे हुए थे, चल रहा था संवाद, तो सब लखनऊ वाले एंटर हुए वहाँ पर। तो हमारा टर्न बाबा से मिलने का बहुत लास्ट में आया, क्योंकि ये बात तब हम बहुत यंग थे ना? और उस समय तो 17 साल के थे, तो इसीलिए पहले तो सारे बुजुर्ग और फैमिली मेंबर सब कोई मिले, और उसके बाद जब हमारा टर्न भी आया तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे आओ, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था, तो ये भी सौभाग्य की बात है कि भगवान किसी का इंतज़ार करे। लेकिन हमें कमी समय हुआ था ज्ञान में, कुछ महीने तो हमने सोचा कि आने का प्लान तो हम लोगों का 7 बजे तक था, अब पहुंचे हैं 8:30-9 बजे, लेट हो गया। तो हमने तो उस रीति से, हाँ बाबा आने में लेट हो गई, बस लेट हो गई, ऐसे हो रहा था विजिबिलिटी। अच्छा अच्छा, तो बाबा ने कहा अच्छा बस लेट हो गई। बाबा तो कह रहा है बहुत बहुत समय से बाबा इंतजार कर रहा था। तो हम तो यही समझे कि 2 घंटा लेट हो गए इसलिए, लेकिन पास में सब दादियाँ वगैरह बैठी हुए थे और सब, तो बताया कि बाबा का भाव ये है कि बहुत समय के बिछड़े हुए हम सब बच्चे हैं बाबा के, 5000 साल के बिछड़े हुए, तो इसीलिए बाबा उस उद्देश्य से कह रहा है कि बहुत समय से 5000 वर्ष के बिछड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा से मिले। तो बाबा से जब भी पहले कोई मिलता था ना, जब भी हम लोग मिलते थे तो ऐसे ही बाबा हाथ फैला देते, बाहर चित्र भी है ना, ऐसे चित्र देखा होगा ना आपने, बस बाबा यूं कर देते थे और बस चुंबक की तरह खींचते हुए ना एकदम बाबा, ऐसा बाबा के अंदर अलौकिक आकर्षण था कि बस मैग्नेट की तरह, जैसे मैग्नेट में सुई या कोई लोहे की चीज चिपक जाती है, दूर से खींच जाती है, ऐसे ही आ जाते थे बाबा की बाह में आए। और ब्यूटी ये होती थी कि बाबा के संपर्क में जो भी आता था, जिस पर भी बाबा की दृष्टि पड़ती थी, वो विदेही हो जाता था, अशरीरी हो जाता था। बस बाबा के बाह में आए एकदम जैसे अशरीरी हो गए, बस वो अशरीरीपन का अनुभव। आजकल तो फिर भी बहुत पुरुषार्थ करो, थोड़े समय के लिए कुछ हो जाए ना भी हो, विदेहीपन की स्थिति का। लेकिन बाबा का अपना पुरुषार्थ इतना तीव्र था, जो आप सबने भी पढ़ा है ना बाबा की जीवन कहानी में, कि बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया था। क्या पक्का किया था? आत्मा का, यशोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण, जहां जहां व्यक्ति का बुद्धि योग जा सकता है, पति पत्नी बच्चों में बहू में व्यवसाय में धंधे में धन दौलत में, सब जगह जहां व्यक्ति का बुद्धि योग जा सकता है, वो बाबा ने पक्का किया था। इस कारण से क्या था कि बाबा के नैनों में भी वही शक्ति थी, बाबा के एक एक ऑरा जो था लाइट का था, जैसे देवी देवताओं का दिखाते हैं ना, तो वो इन आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो जैसे वो ऑरा अपना इफेक्ट दिखाता है, और वो भी चुंबक का कार्य करता है। लाइट पिक्चरों में देखते हैं ना, महान आत्माओं के, राम कृष्ण हनुमान, चाहे क्राइस्ट हो, मोहम्मद हो, जो भी आध्यात्मिक रीति से महान आत्मा होके गई हैं, उनका लाइट का ऑरा, तो ऐसा वो खींचता है। फिर थोड़ी देर तक वो अनुभव किया, फिर बाबा ऐसे बड़े प्यार से, हाँ बच्चे आओ, हाँ बच्चे आओ, आओ वापस आओ वापस। तो कोई आत्मा शरीर से निकल के नहीं जाती है, लेकिन अशरीरी अवस्था का अनुभव ऐसे होता है कि शरीर जैसे अलग, आत्मा अलग, जैसे एनेस्थीसिया हो और ऐसा चीज हो तो कोई इंजेक्शन लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो महसूस नहीं होता ना, चेतनता जैसे लुप्त हो जाती है। ऐसे शरीर से जब आत्मा विदेही होती है, तो शरीर से जैसे वो लौकिकता लुप्त हो जाती है। फिर उसके बाद जब आते हैं बाबा के, अपने को बाबा की बाहों में पाते हैं, बाबा टोली खिलाते हैं, नाम पूछते हैं, इस तरीके से परिचय होता है, कोई बात पूछनी होती है पूछते हैं, और फिर एक जाता है दूसरा आता है, उसको भी वैसा ही अनुभव होता है, क्योंकि ये बाबा की अपना पुरुषार्थ था इतना तीव्र। कि दूसरे को भी थोड़े समय के लिए उस स्थिति का अनुभव करा सकते थे। तो बाबा ने हमसे पूछा क्या नाम है, हमारा एक्चुअली लौकिक नाम श्री है, तो जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण होते हैं ना, तो श्री फर्स्ट नेम था, सिंगल सरनेम। तो बाबा को बताया श्री, तो बाबा ने कहा अच्छा क्या बच्चे बोलो फिर से, तो थोड़ा तेजी से लाउडली बोला तो श्री, वाह। तो बाबा में सबसे ब्यूटी ये थी, देखो जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा होती है ना, सबको उससे ये अनुभव होता है कि बाबा मेरा है, बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, और सबको वैसा अनुभव होता है। अब वही बाबा की ब्यूटी थी, बच्चों के साथ बच्चे जैसा, युवानों के साथ युवाओं जैसा, वृद्ध के साथ वृद्ध जैसा, बस बाबा अपने हमजिन्स टीचर्स को जैसे हमजिन्स बोलते हैं, ऐसे ही अलग अलग हर एक को ये अनुभव होता था बाबा मेरा है, जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं। तो बाबा ने बड़ा जॉली मूड में, जोकिंग मूड में बोला अच्छा श्री वाह बहुत अच्छा नाम, देखो अभी तुम श्री नाम कैसे लगा सकते हो, अभी तो बाबा भी ब्रह्मा बाबा भी अपने को श्री नहीं कह सकता, तो तुम श्री कैसे कह सकते हो, ऐसे हंसी में कहा। तो हम तो समझे नहीं पूरा ज्ञान क्या रहस्य है, नए नए थे तो। लेकिन फिर बाबा ने बताया देखो बच्चे, दादियों ने भी जो बैठे हुए थे, कि श्री तो उसे कह सकते हैं, किसे कहते हैं श्री, देवताओं को जिनकी आत्मा भी पवित्र शरीर भी पवित्र, उनको श्री कह सकते हैं, और शिव बाबा तो श्री श्री है, सदैव श्रेष्ठ है। तो न इस समय पूरे सृष्टि में न कोई की आत्मा पवित्र है न शरीर, शरीर तो विकारों की उत्पत्ति है, और आत्मा ने भी 84 जन्म लेते लेते आत्मा पर भी विकारों की इतनी खाद पड़ गई है, इसीलिए श्री तो कह नहीं सकते। तो बाबा ने फिर कहा देखो बाबा अब तुम्हारा नाम मोहन देता है और श्री जैसा अब तुम्हें बनना है। तो ये ब्यूटी होती थी, अभी तक तो हम लोगों ने सुना था कि यज्ञ के आदि में बाबा ने दादियों के और सबके जो नाम होते थे बदली करे, और बदली का भाव ये होता था कि वर्तमान हम भूल जाएं और नया जो नाम है रूप है स्मृति में जो बाबा परिवर्तन कराता है उसमें हम स्थित हो जाए। तो दादियों के तो सारे कितने डिवाइन नेम हैं, और इसमें बाबा का ये लक्ष्य था कि अब श्री के अधिकारी तब बनोगे पहले जब अपनी आत्मा और शरीर इनको पावन बनाओगे, और अभी संगम युग में तुम्हारा नाम मोहन है जिससे ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा वर्तमान समय, जैसे ब्रह्मा बाबा को था ना मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूँ, वो स्मृति आई वो पक्की हो गई, जैसे ही बाबा को साक्षात्कार हुआ था, आप सबने पढ़ाई है जीवन कहानी में, तो वो बाबा के सदैव बुद्धि में रहता था। तो बाबा ये चाहता था, बाबा ने जब पहले विनाश का भी साक्षात्कार किया, और उसके सबसे पहले जब विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया तब बाबा को हाँ विष्णु चतुर्भुज से क्या आभास हुआ, क्या आवाज आ रही है, विष्णु चतुर्भुज ने दर्शन दिए और विष्णु चतुर्भुज से अहम चतुर्भुज तत्व, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ तुम भी वो ही हो। तब तो बाबा समझे नहीं इसका भाव क्या, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पष्ट हुआ तत्त्वम यानी मैं आत्मा विष्णु चतुर्भुज और तुम भी, भले इस जन्म में दादा लेखराज हो अभी, लेकिन तुम विष्णु की नारायण की श्री कृष्ण की आत्मा, वो ऐसे अब बाबा को तो साक्षात्कार हुआ डिवाइन, और जिनका साक्षात्कार का और ज्यादातर तो अनुभवी कर सकते हैं, तो बाबा जब तक साकार में थे बच्चों को ना इस तरीके से उनका स्मृति परिवर्तन करते थे। किसी का नाम बाबा ने भी अभी 2-3 दिन पहले भी मुरली में आया था ना, आजकल तो कलयुग में क्या क्या नाम भूसरमल कचड़ामल ऐसे रखते हैं बाबा, कहते हैं सतयुग में ऐसे नाम होते नहीं, वहां तो बड़े अच्छे नाम होते हैं। किसी का नाम यहाँ माया देवी होता था तो बाबा क्या करता था, बच्ची अब माया का क्या काम, माया को याद नहीं करो, अब बाबा तुम्हारा नाम जो भी उसके अनुरूप होता था, लक्ष्मी देवी या कोई भी जो भी ज्ञानी युक्त नाम वो दे देता था। तो आप ये नहीं समझना हम लोग तो बाद में आए और ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, हमारा तो नाम बदला नहीं, नहीं सभी का नाम बदल गया। क्या हो गया नाम, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। लौकिक में बच्चा प्यारा होता है ना, माँ कहती है ना राजा बेटा राजा बच्चा, तो राजकुमार राजकुमारी जैसे होता है। तो अभी हम सब का नाम बाबा ने स्मृति बदल के ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो कभी भी कोई कमजोरी की बात हो, कोई ऐसा पुराना संस्कार जागृत हो रहा हो, तुरंत अपनी स्मृति को हम चेतनता में ले आए, मैं तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा का बच्चा, मैं ये कैसे सोच सकता हूं, मैं ये मर्यादा विहीन बात बोल नहीं सकता, ये मर्यादा से विपरीत कर्म का हो नहीं सकता मुझसे। जैसे ही ब्रह्मा कुमार याद आएगा या ब्रह्मा कुमारी याद आएगा तो उससे, तो इस रीति से बाबा ने पहली मीटिंग में एक तो कानपुर गए थे तो ये अनुभव कराया कि तुम अभी तुम्हें श्री जैसा बनना है जैसे, हाँ तो ये भी एक बहुत ही लाभ की बात रही है। और क्या देखा बाबा का, तो बाबा का ये अनुभव होता था, और बाबा ने पहला पुरुषार्थ क्या किया, हम सबको भी वो ही पुरुषार्थ करना है, बाबा के कदम पर कदम रख के जितना चल लेंगे, क्योंकि साकार एक होती है सुनी सुनाई बात, ये मैं जो भी बता रहा हूँ देखी हुई अनुभव, क्योंकि बाबा से कई बार करीब 12-15 बार अलग अलग इन 7-8 साल में मिलना हुआ, बाबा के साथ रहना हुआ, तो उनको मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। तो पहले तो सबसे पहले स्मृति में ये हमेशा रहे कि मैं ये हूँ ब्रह्मा कुमार। दूसरा, बाबा के साथ ना जब कोई भी आता था होता था तो बाबा का इतना ज्यादा प्रभाव क्यों होता था, क्योंकि बाबा ने पहले उस बाबा ने उसका प्रयोग पहले अपने ऊपर किया होता था। हम सब ने भी सुना है शायद गांधी जी की बात है, या कोई माता लेके आई बच्चे को, ये गुड़ बहुत खाता है, तो पहले ही उसमें बाबा ने गांधी जी ने ये नहीं कहा कि बच्चे गुड़ नहीं खाओ, बोला 15 दिन बाद लाना। 15 दिन बाद आया, आप सबको ये कहानी मालूम है साधारण सी है, तो बापू ने बताया मैंने ये पहले इसलिए नहीं बताया कि पहले मैं खुद भी गुड़ खाता था, अगर मैं कहता तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसी रीति से ब्रह्मा बाबा ने ना जैसे ही ये अनुभूति हुई मैं आत्मा हूँ, तो डायरी में लिख लिख के पक्का किया, वो डायरी हम लोगों ने देखी है, मैं आत्मा हूँ निर्मला आत्मा है ये सब। तो अपने को हम ये चेक करें, भले लिख करके पक्का न किया हो, लेकिन हम लोगों ने किसी भी रीति से जैसे भी जब भी किसी आत्मा को देखें भ्रकुटी में ही हमारी दृष्टि जाए, देह की तरफ दृष्टि न जाए। तो इसीलिए बाबा ने बार बार ये कहा है बच्चे पहले अपने ऊपर करो, क्यों, क्योंकि एंड रिजल्ट अंतिम रिजल्ट बाबा की बुद्धि में सदा रहता था, एंड रिजल्ट क्या है, अंतिम हमारा अचीवमेंट क्या है, जो भक्ति मार्ग में भी गायन है, गीता में क्या गायन है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो मोह नष्ट हो जाए, मोह भी नष्ट तब होगा जब व्यक्ति का देह की विस्मृति होगी। जब तक ये याद रहेगा ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये धनधान है, तो बुद्धि उधर जाना स्वाभाविक है और जाएगी ही अंत तक। तो इसीलिए बाबा ने तो लिख करके पक्का किया, लेकिन हम लोगों ने चलो अभी लिख करके नहीं भी किया हो तो बाबा जैसे कहता है, एक मुरली में बाबा ने कहा था, पता चलता है बच्चे जब बाबा से मिलते हो, अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे, कि बाबा नैनों में देख रहा है या ब्रकुटी में देख रहा है, पता चलता है, क्योंकि मुंह पर देखेंगे और इसमें तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा किसी को कि कोई नैनों में देख रहे हैं या ब्रकुटी में देख रहे हैं। तो इसीलिए ये एंड रिजल्ट नष्टो मोहा का बाबा का जो था लक्ष्य है वो पहले दिन से ही पक्का हो, इसीलिए एक तो ये बात पक्की करी। उससे क्या होता था, हमें भी नष्टो मोहा तो बनना ही है, तो इसीलिए एक ये पक्का होता रहे। और क्या पक्का करेंगे साथ साथ, इतना भी नहीं, स्नेह सबसे हो, सबसे प्यार हो, लेकिन किसी से अति स्नेह ना हो, क्योंकि दो चीज होती है, राग और द्वेष। तो इसलिए अगर किसी से राग प्यार हुआ तो अति स्नेह अगर हुआ तो उसे मन की बात बताए बिना रह नहीं सकते, कोई भी बात होगी उससे शेयर करेंगे। तो जहां किसी से अति राग हुआ, अति स्नेह हुआ, तो दूसरे से अति द्वेष भी होगा, ये नियम है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सबके साथ समान व्यवहार, एक जैसा स्नेह। कबीरदास जी भी होके गए ना, उन्होंने भी कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्ती अगर बहुत हुई, स्नेह हुआ, अति स्नेह हुआ, तो दूसरे से बैर जरूर होगा, पक्का होगा। और ये अपने से हम अभी चेक भी कर सकते हैं, अभी तो हमारा ये ब्राह्मण परिवार है, तो दुनिया वाले कोई अगर बात करेंगे क्रोध अहंकार या कोई बात, तो हमें महसूस नहीं होगा भाई अज्ञानी है, इन्हें क्या मालूम इन्हें धारणाओं का। लेकिन अपने ब्राह्मण परिवार से अगर कोई क्रोध करता है, उनमें से बोलता है, कोई मर्यादा विहीन बात करता है, कोई ऐसा कर्म होता है, तो हमें तुरंत होता है, देखो ये इतने 15 साल पुराने, 20 साल पुराने, 25 साल, अभी तक भी इनमें ये बात है। तो इसीलिए बाबा ने एक तो ये पक्का किया, और दूसरा बाबा ने क्या महसूस किया, दूसरा बाबा ने ये महसूस किया कि ज्ञान अच्छा है, ज्ञान सुनाते भी हैं, लेकिन मन जो है अभी तक भी भाग जाता है। हम सबका अनुभव है, बाहर से कर्म करके आए, बिजनेस से, नौकरी व्यवहार से, और बैठे, लाल बत्ती भी जल गई, सेंटर में रिकॉर्ड भी बजना शुरू हो गया, साथ में कमेंट्री भी योग की अगर हो रही है, या कोई ऐसा वातावरण बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मन तो इतना सूक्ष्म है, जहां पर सारा दिन भर मन रहा होगा, बार बार वहीं खींच करके हमें ले जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा भी ये महसूस करते थे, देखो बाबा में कितनी सच्चाई, सफाई। बाबा ने कभी नहीं सोचा, नहीं तो कोई गुरु होता है अपनी कमजोरी छुपाएगा चेलों से, उन्हें नहीं बोलेगा, क्यों, वो सोचेगा मैं तो बड़ा हूं, लोग चेलों की भावना है मेरे अंदर। बाबा ने कहा नहीं, देखो बच्चे, बाबा इंजन है, आगे रहता है, बाबा के सामने पहले ये परीक्षा आती है, बाबा का मन अभी भी भागता है, मन इधर उधर। तो बाबा ने पत्र लिखा मन को, सुना होगा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तुम जो है मेरे कर्मचारी हो। बुद्धि को, मन और बुद्धि दोनों को पत्र लिखा, लेकिन मुझ राजा को तो उसने मन तुमने कमजोर कर दिया और मन और बुद्धि तुम दोनों ने मिलकर, तुम दोनों मिलकर इतने शक्तिशाली हो गए, अब मुझ राजा को कमजोर कर दिया तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि अब मैं तुम्हारे कहने में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने सोमान में स्थित हो गया। तो यदि हम भी ये स्वीकार करते हैं, और हर एक कोई स्वीकार करेगा कि मन अभी भी भाग जाता है, बैठे योग में बैठे, कहने को आधा घंटा भी योग में बैठे होंगे, हो सकता है 15-20-25 मिनट भी मन भाग गया हो, जहां पर सारा दिन भर कार्य व्यवहार होता है, बुद्धि होती है, मन बार बार वहीं भागेगा जहां इंटरेस्ट होता है। किसी का खेल में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में, बार बार उसमें जाएगा। किसी का धन में है, धन कमाने में जाएगा। किसी का किसी के नाम रूप में है, उसके नाम रूप में मन भागेगा। मन भागेगा ही वहां जहां पर कोई लगाव झुकाव वगैरह होगा, और वो सबका होता है। इसीलिए हमें ये चेक करना है, और बाबा ने ओपनली स्वीकार किया, तो हमें भी अपने से सत्य होना पड़े। सबसे ज्यादा इसीलिए भगवान का नाम सत्यम शिवम सुंदरम है। बाबा अपने से बहुत बहुत सत्य था, जो भी होता था खुद स्वीकार करके कई बार मुरली में बता देता था। बाबा कहता है, मैं भी बच्चे खाना खाने बैठता हूँ, एक गिट्टी खाता हूँ, बाबा को याद करता हूँ, फिर बाबा भी भूल जाता है। भले बाबा बच्चों में हिम्मत दिलाने के लिए ये ज्यादा कहता हो, लेकिन स्वीकार करना पहला बात यही है, महसूस करके ये स्वीकार करना कि मेरे में ये कमजोरी है। अगर वो स्वीकार करा तब हम उस कमजोरी को निकाल सकेंगे। लेकिन उसका वर्णन भी ना करें बार बार, क्या करूं, इतने साल हो गए, ये कमजोरी अभी तक भी है, नहीं, वर्णन नहीं करना है, महसूस करना, अंदर ही अंदर स्वीकार करके उसे निकाल देना है, अंदर जाने का अभ्यास। तो ये बाबा ने बार बार करा। इसीलिए बाबा ने देखो कितने लौकिक दुनिया में, और जहां सत्यता होती है वहां निर्भयता अवश्य होती है। लौकिक में कहते हैं, अरे गुरु ने कोई मंत्र दिया, ये मंत्र किसी को नहीं बताना, एक गुरु किसी ने किया, गुरु को बस जीवन भर यही गुरु रहे। लेकिन बाबा सत्यता की खोज में थे, सत्य थे, तो एक एक करके कितने गुरु किए बाबा ने, 12-13 गुरु किए। तो देखो वो निर्भय होगा, उसे भय नहीं होगा किसी चीज का, ऐसी चीज का। क्यों? क्योंकि सत्यता की खोज में थे बाबा। ऐसे ही हमारी भी ज्ञान मिल गया, सत्य मिल गया, लेकिन ओम शांति कहते भी हैं, लेकिन कितने हद तक उस ओम शांति की स्थिति में स्थित रहते हैं, ये बाबा बार बार प्रैक्टिस कराते थे। इसीलिए जब भी हम लोग आते थे, बस बाबा यही कहते थे, बच्चे आज की मुरली पढ़ी, ट्रेन में आते थे, जाओ पहले मुरली आज की पढ़ के आओ। हम लोग आते थे, जल्दी होती थी, फ्रेश होके बाबा से मिले। बाबा बाबा कहता था, नहीं ठीक है, बाबा तो मिलेगा ही, लेकिन पहले आज की मुरली पढ़ के आओ, भगवान ने क्या कहा। इतनी वैल्यू उसकी ये होती। और बाबा से क्या होता था, बाबा से जब जब मिलते थे, हम मिलते थे तो जब ग्रेजुएशन हमने कर रहे थे, तभी हमारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो अभी IIT है। तो वहाँ पर तो हमने बाबा से पूछा कि बाबा वहाँ जाएंगे और वहाँ तो हॉस्टल में रहना पड़ेगा और वहाँ का खाना खाना पड़ेगा, तो क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि अरे बच्चे, जब हम अपनी पवित्र दृष्टि वृत्ति से दुनिया को नया बना देते हैं, तो क्या भोजन को शुद्ध नहीं कर सकते? तो इसीलिए दृष्टि देकर भोजन, क्योंकि बाबा जानता था ये अभी नया है, एक महीने एक साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी अगर ये बोलेंगे ज्ञान की बात कि तुम्हें अपने हाथ से खाना पकाना है, खुद खाना है, होस्टल का नहीं खाना है, तब शायद आज हम होते भी नहीं है इतना वो। लेकिन बाबा कितना युक्तियुक्त, एक तरफ तो बाबा ने ये कहा बच्चे वहां पर होस्टल में भोजन करो, हाँ जो बनाने वाला है उसको हाथ करके उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के बोलना, बिना प्याज लहसुन का खाना निकाल दे, वो बिना प्याज लहसुन का और दृष्टि दे के खाओ। तो वाकई बाबा ने बोला था, उसको थोड़ा बोला तो ऐसे अपने इनिशिएटिव लिया, तो कई 8-10 और निकल गए जो प्याज लहसुन घर में नहीं खाते थे। तो इसीलिए वहां पर भले भोजन शुरू में हमने वहां किया, तो एक तरफ बाबा ने कहा कि बच्चे दृष्टि देके भोजन करना है, दूसरी तरफ बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम्हें जो है ना जहां पर हो वहां सेंटर तो था ही नहीं धनबाद में, बस ऐसे आसपास बहुत दूर तक है, नियरेस्ट सेंटर दूर था सिंदरी में। तो बाबा ने कहा बच्चे वहां मकान ढूंढो और सेंटर खोलो। अब स्टूडेंट लाइफ में एकदम ये कैसे होगा, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन करण करावनहार वो है ना, भगवान के मुख से महावाक्य निकला तो ढूंढा, मकान भी मिल गया, लेकिन सेंटर ऐसे तो चलता नहीं, धन होना चाहिए और स्टूडेंट है कमाने वाले नहीं। तो बाबा ने क्या करा, वहां पर ये नियम था जब हमारा एडमिशन हुआ था तब वन ऑफ द लास्ट कैंडिडेट्स थे, 150 स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया में सिलेक्शन होता था, तो हमारा 140 के बाद नंबर था सिलेक्शन में। लेकिन जब स्कॉलरशिप के लिए वहां उन 150 का आपस में एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें फर्स्ट 10 में नंबर आ गया और स्कॉलरशिप मिलने लगा। तो देखो करण करावन हार के मुंह से अगर कुछ निकलता है ना तो वो सिद्ध हुआ पड़ा है, बस हमारा हिम्मत का एक कदम और 10 कदम बाबा बढ़ के। तो हमारे साथ हमारे साथी भी एक विनोद भाई वो भी निकल गए, तो हम दोनों इस तरीके से सेंटर शुरू हो गया पहले साल से ही। कुछ महीने भले वहां खाया वो 2-3 महीना, लेकिन उसके बाद सेंटर पर खाया, क्योंकि सेंटर खुल गया, बहने आ गए रहने के लिए, फिर तो बाकी 3 साल वहां पर खाया। तो एक तो ये कि बाबा मुरली में भी जो हिदायत देता है या पर्सनल, उसके पीछे क्या गुह्य रहस्य है, ये बात। फिर उसके बाद वहां पढ़ाई करी 4 साल तक, फिर साथ में मधुबन तो आते ही रहते थे, हर साल भी आते थे, बीच बीच में भी छुट्टियां होती थी आते थे। तो हमें याद है एक बार बाबा के पास यहाँ हम लोग 3 कुमार आए हुए थे अलग अलग जगह से, तो बाबा लच्छू दादी बाबा की पीए होती थी, टाइम दिया मिलो, हम लोग मिले तो अलग अलग हैं, तो एक भाई मिला, उसने कहा बाबा ऐसा मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ फर्स्ट ईयर में, लेकिन मैं 4 साल तक पढ़ना पड़ेगा, बाबा की क्या प्रेरणा है। तो बाबा ने सीधा ही कहा कि बच्चे कोई नहीं, अभी तो शुरू ही किया है तुमने, अभी पढ़ाई तुम्हारी पूरी हुई, बाबा की सेवा में लग जाओ। तो वो अपना बाबा की सेवा में लग गया। दूसरा एक भाई था, बिजनेस फैमिली से था, अकेला ही ज्ञान में था वो कुमार, वो मिला बाबा से, तो बाबा ने कहा बच्चे उन माता पिता को परिवार वालों को जरूर हाथ में करके, उन बाबा वो तो बार बार प्रेशर डालते हैं तुम मैरिज करो और ये है बिजनेस संभालो, कि बिजनेस में उनकी मदद करो लेकिन अपनी धारणाओं पर पक्के रहो। और इस तरीके से उसको भी बाबा ने कहा कि तुम्हें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने भी पूछा था। फिर मेरा टर्न आया तीसरा, हम लोग यही झोपड़ी में ही बाबा से मिल रहे थे, तो अलग अलग वन बाय वन हमने कहा बाबा ऐसा है कि वहां पर बाबा जानते थे, तब वो नहीं नहीं तुम्हें तो पढ़ना है, मैंने कहा बाबा ये तो डबल स्टैंडर्ड, उनको कहा कि भाई तुम मत पढ़ो, सेवा में लग जाओ, समय कम है, शुरू से ही ये है समय कम है, उनको कहा और हमें कह रहे हो कि तुम पढ़ो और तुम्हें तो सर्विस करनी है। और किन्हीं बच्चे, हर एक की जन्म पत्री अलग अलग होती है और तुम्हें तो पढ़ के तुम्हारे द्वारा बाबा को देश विदेश की बहुत बहुत सेवा करानी है और भारत में भी बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के वीआईपीस की सर्विस के निमित्त बनना है, इसलिए तुम्हारा पढ़ना आवश्यक है। तो देखो हर एक की जन्म पत्री अलग अलग होती है। और देखा कुछ साल बाद ही बाबा ने एक व्यक्ति जिसको भाई को बोला था ठीक है पढ़ने की जरूरत नहीं, सेवा में लग जाओ, वो दो तीन कुछ साल में उसका कोई एक्सीडेंट हुआ और उसने शरीर छोड़ दिया। अगर वो पढ़ता भी तो भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, नौकरी तो इंजीनियरिंग करके भी फायदा क्या होता, जब शरीर छूट गया कोई फायदा नहीं। दूसरा था बिजनेस वाले, और बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव ये सब आया तो घर में उसने भी बहुत सहयोग करके लेकिन अपने ज्ञान में पक्का रहा, बाद में उसका परिवार वाले भी ज्ञान में आ गए। तो बाबा हरेक की जन्म पत्री देख करके जैसे राय देता था। हम लोग देखते थे कि बस जब भी आते थे बाबा के पास और वो बाबा किस प्रकार से शिक्षा देता था। बाबा एक एक, हम लोग सोचते थे हम तो लोग तो अभी यंग है, लेकिन बाबा एक एक चीज दिखाता, देखो बच्चे ये किचन है, ये मकान जहाँ अभी शांति स्तंभ है वहां पर टेनिस और हम लोग बैडमिंटन बाबा के साथ खेलते थे। तो बाबा देखो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, बहुत बच्ची आएंगी उनकी ट्रेनिंग होगी ये। तो बाबा पहले से ही हम सब के माइंड को ट्रेन कर रहा था कि तुम अपने को ये नहीं समझो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं छोटा हूँ, नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि आगे चल करके हम ब्राह्मण बच्चों को ही ये सारा का सारा संभालना है। बाबा पहले से ही मन बुद्धि को विशाल करता जाता था। अब बाबा से जब भी मिलते थे बस बाबा कहता था, हमें याद है बड़े बड़े भाई लोग कोई आते थे, एक बार कलकत्ता में मेला हुआ तो वहां पर किन्होंने आग लगा दी, सुना होगा आप लोगों ने। तो हमारे जो परम मित्र कोई आर्य समाजी वगैरह होते थे तो हमारे कुछ बड़े बड़े वकील खास कानपुर के त्रिलोक चंद जी, संतराम जी, मोती चंद जी आदि आदि वो होते थे। तो उन्होंने कहा बाबा हमें इन पर केस जरूर करना चाहिए, हमारे पास प्रूफ है, पिक्चर है, प्रमाण है और इन्हें सीधा सजा होगी और हमारा जो नुकसान हुआ उसकी इन्हें भरपाई करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी भी बच्चा कैसा भी हो बच्चे पर केस नहीं कर सकता। बाप का काम है बच्चे जितनी भी गलती करें उन्हें मार्गदर्शन देना लेकिन क्षमा करना। तो बाबा का ये देखा कभी भी ऐसा स्वरूप जो होता था, इसीलिए बाबा सारा सेवा का संभालते हुए भी धीरे धीरे जैसे 1965, 66 हुआ, 67, 68 धीरे धीरे समेटता जा रहा था। बस एकांत बिल्कुल अधिकतर समय बाबा का मनन चिंतन में रहता था, एकांत में रहता। तो जब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई इंजीनियरिंग की तो उसके बाद हमारा तीन जगह सिलेक्शन हुआ था, दिल्ली में मेट्रोलॉजी में, एक हैदराबाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट में और एक ओएनजीसी। ओएनजीसी माने तेल निकालने की कंपनी होती है लेकिन फील्ड जॉब होता है। तो हमारा इधर जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। हमने बाबा को कहा बाबा ये है और हम दिल्ली में ज्वाइन कर लेते हैं, सेंटर भी है हैदराबाद भी, सेंटर वगैरह है वहाँ, पालना होती रहेगी, वहाँ पालना हमें मिलेगी। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे वहाँ नहीं, पालना तो ले ली, चार साल हो गए इंजीनियरिंग पढ़ी ना, पालना ले ली, अब पालना देनी है तुम्हें और इसीलिए ये ओएनजीसी में इससे ज्वाइन करो। मैंने कहा बाबा इसमें तो आसाम में बहुत दूर पोस्टिंग हुई है, एक भी सेंटर नहीं है, गीता पाठशाला नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए तो बाबा कह रहा है तुम्हें जाओ, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बाबा करण करावन हारे, बाबा कराएगा, तुम्हें निमित्त जाना है। और वास्तव में हम गए, देखा ना हमें सेवा का अनुभव था, कोई सेंटर का कोई और विशेष अनुभव नहीं, लेकिन करण करावन हार बाबा, बाबा के हमेशा पत्र, अभी भी मेरे पास 10 पत्र बाबा के रखे हुए हैं। बाबा के जाओ बच्चे, जगह का नाम था शिव सागर, वहां पर बड़ी लेक है, लेक के किनारे जाके चित्र फैला के बैठ जाओ, वो समझाओ, तुम वहां पर मंदिर में जाओ, शिव मंदिर बहुत बड़ा है, बाबा को लिखा करते थे यहाँ पर बहुत बड़ा शिव मंदिर है, शिव सागर नाम इसीलिए पड़ा है, तो बाबा कहते थे वहां जाके। तो भाव क्या होता था, निमित्त जाके बैठते थे, चित्र खोल के एक दो को समझाते थे, भीड़ लग जाती थी, देख करके आते थे, समझते थे, और उन्हीं में से ही कितनी माताएं ऐसे निकल गए, मारवाड़ी माताएं बहुत, मतलब वहां पर उन रिच होते थे, उनका एक अपना मंदिर मारवाड़ी मंदिर था, उसके ऊपर उन्होंने हॉल एक बनाया था और उन्होंने कहा आप वहां आके समझाओ। तो बिना किसी पुरुषार्थ के, बिना किसी उसके, क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, तो इस कारण से, लेकिन बाबा कहता था यहां बैठ के ये चित्र समझाओ, वहां जाते थे। और उसके बाद तो और भी वंडर हुआ, वहां जाके ज्ञान सुनाते थे, ज्यादातर माताएं आती थी, तो इस तरह थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी लोगों में हुई, क्योंकि ज्ञान की जब बात होती है, धारणाओं की बात होती है, तो फिर उनके पति और सब लोग ज्ञान में आने के लिए बाधा डालते हैं। लेकिन बाबा जानता था बच्चा यहाँ अकेला है और कोई नहीं, हमने बाबा को लिखा बहुत, यहाँ से तो 3000 किलोमीटर, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा बैठा है करण करावन हार, बस बाबा लिखता था और छोटी छोटी बच्चियां 6-6, 7-7 साल की आते थे, 10 साल के, बहुत कई कन्याओं का ध्यान का पार्ट खुल गया साक्षात्कार का। और बड़े बड़े करोड़पति परिवार वाले थे, वैसे वो बाधा डालते थे, जब उन्होंने देखा हमारी बच्चियां ही बस जाके कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं खेल, वो तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था, पूछते थे ध्यान से उतरने के बाद, अरे मैंने ये वो, जो बच्चियां तो कोई बनावटी बात तो बोल नहीं सकते ज्यादा, तो ऐसे सर्विस किस रीति से बाबा कहां करवा ले। जब बाबा देखता है, कहता है ना, मैं देखता हूं कि ज्ञान सुनने वाला बड़ा बुद्धिमान अच्छा आया है और सुनाने वाला उतना नहीं है, बुद्धू है जैसे, तो बाबा भी उसमें प्रवेश करके सुना देता है। ऐसा कई बार हमें अपने जीवन में अनुभव किया कि जैसे बाबा ही बोल रहा है, सुना रहा है, क्योंकि वो सुन के जाते थे और उनका तो जीवन ही एकदम बदलने लगा। तो इस तरीके से बाबा ने ये सेवाएं करवाई। और जब सेवा कराए, वहां बाबा ने कहा था पोस्टिंग हुई, बहुत जल्दी सेंटर खुल गया। और उसके बाद तो आसाम के अंदर ना, जो आसाम में हुए, त्रिपुरा में हुए, मेघालय में हुए, नागालैंड में हुए, और अलग अलग जगह है, और अभी 2-3 साल पहले ही जानकी दादी उस सेंटर का गोल्डन जुबली का उद्घाटन करके आई, ये शिव सागर का पहला सेंटर जो बाबा ने वहाँ खोला, और 1968 में तो वहाँ पर गए थे, तो बाबा के सामने ही वो खुला, उसी की जब इतना बड़ा विशाल रूप में रिट्रीट सेंटर बन गया, जानकी दादी गए थे, तो प्रसन्नता होती है कि कुछ भी अनुभव ना हो, कुछ भी मालूम ना हो, फिर भी बाबा करण करावन हार किस प्रकार से वो करवाता है। तो इस प्रकार से चलता रहा। लेकिन हम देखते थे जब भी बाबा को मिलते थे कि बाबा समेटता जा रहा था, बहुत एकांत, बिल्कुल सेवा का भाव, बीच में जब ममा ने शरीर छोड़ा ना, तो ममा के बाद उसका कारोबार बड़ी दीदी को काफी सौंपा गया, बाबा ने सौंपा, तो बस बाबा फिर धीरे धीरे और एकांत प्रिय हो गया। और जब समेटते जा रहे थे, बाबा से मिलते थे, और इसका बड़ा अनुभव तो हमने तब किया जब हम असम में पोस्टेड थे और यहाँ पर आए और बाबा से मिले 17-18 जनवरी को। तो ये अनुभव बाबा ने सब तरफ से जब समेट लिया तो अपने मन के ऊपर कैसे मन जीते जगत जीत, तो वो अनुभव तब किया। बाबा के सम्मुख गए, हमेशा की तरह मिलने जाते थे, मिलने गए, बाबा देख के पूछते थे, हाँ बच्चे क्या अनुभव है, क्या पूछने आए हो? लेकिन बाबा ने कुछ नहीं पूछा। 17-18 जनवरी को तो 6 बार बाबा से मिले, बाबा दृष्टि दी, मन के भाव पड़े और बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मन के अंदर वो ही पढ़ सकता है दूसरे के मन के भाव जिसने अपने मन के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त की होगी। तो बाबा ने भी अंतिम दिन तक जैसे पूरा का पूरा संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि बाबा ने सब धीरे धीरे समेटते जा रहे थे। और बाबा ने अंतिम दिन भी ये बोला, जो पत्र लिखने हो वो पत्र लिखवा दो, वो सब बाबा ने लिखा। लेकिन मुख्य बात क्या थी बाबा की, कि बाबा ने पहले दिन से जो लक्ष्य रखा था, जब से बाबा को साक्षात्कार हुआ अहम चतुर्भुज तत्त्वम का, और जिस दिन से बाबा को ये सुनाई पड़ा, दिखाई पड़ा कि परम धाम से आत्माएं आ रही हैं, कोई राजकुमार बन रहे हैं, कोई राजकुमारी बन रहे हैं, सब रास विलास खेल कूद कर रहे हैं, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा ने सुना तो शुरू में तो एकदम वो हो गए, कौन था, किसकी आवाज थी, सुना ही आप सबने। लेकिन बाबा ने उस बात को नहीं छोड़ा, बच्चे बाबा ने कहा है तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। वही बात बाबा ने एक एक बच्चे को, हम सब को भी बोली है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। सच हम सब भी तो निमित्त हैं ब्रह्मा बाबा की तरह, तो इसीलिए हमारी बुद्धि से भी कभी ये विस्मृत ना हो कि मुझे ये दुनिया बनानी है, उसके लिए मैं निमित्त हूँ। अगर मेरे कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई कार्य हुआ ऐसा मर्यादा विहीन मनसा वाचा कर्मणा में, तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया को, अरे ये कहते हैं हम ऐसा स्वर्ग बना रहे हैं और इनकी ऐसी चलन। इसीलिए बाबा कहता है चाल चलन और चेहरा, ये तीनों अब रिफ्लेक्ट करने चाहिए। और ये बात को हमने अनुभव भी किया। हाँ, यूजुअली अब साइंस विज्ञान, हम सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में थे तो वहां पर वो लोगों ने खास इसका अनुभव कराते, फोटो निकालते हैं, ऑरा भी आता है और उसका स्टडी वो लोग करते हैं। और उन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बताया है वहां पर कि हमने दुनिया के सब तरफ के लोगों के ऑरा निकाले हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बौद्धी कोई भी हो, किसी भी देश का भी हो, सब देशों के लोग आते हैं। लेकिन जितना ब्रह्मा कुमारी वालों का ऑरा शक्तिशाली होता है, क्लियर होता है, उतना किसी का नहीं होता। तो बाबा ने भी ये कहा है कि विज्ञान जब ये सिद्ध करेगा तो वो ही हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से विज्ञान एक एक चीज को अब सिद्ध करता जा रहा है। जो जो बाबा ने बोली थी ना, वो ही मेडिटेशन के ऊपर, अब दुनिया में हर जगह है मेडिटेशन का, यूनाइटेड नेशन ने भी योगा डे डिक्लेयर कर दिया। तो अंत में ये जब 17-18 जनवरी को हम थे, तो 18 जनवरी को एक बात तो हमने ये महसूस करी, हम बाबा के सामने बैठे हुए क्लास सुन रहे थे, बाबा क्लास करा रहे थे, तो बाबा हमारे मन में बैठे बैठे एक संकल्प आया। देखो मन की बात बताते कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए, अब हमने मुंह से तो कुछ बोला नहीं, सिर्फ संकल्प ही आया। लेकिन बाबा की चूंकि कर्मातीत अवस्था थी, सबके मन के भाव बाबा में पढ़ने की क्षमता डेवलप हो गई थी, तो इसीलिए बाबा ने तुरंत ही आधा मिनट के बाद ही नाम लेके कुछ महावाक्य उच्चार दिए। जो संकल्प हमारे मन में आया ना, कैसे बाबा तक ने कैच किया और कैसे स्वीकार किया, ये बताने का भाव ये है कि बाबा से जो हम लोगों ने अनुभव किया, अब हम सब एक एक बच्चे को भी बाबा के समान बनना है। हमारे सामने भी दुनिया की बहुत आत्माएं आएंगी, दुख दर्द लेके, बहुत भावनाएं लेके, संकल्प लेके कह नहीं सकेंगी, लेकिन अगर हमारी स्थिति बाबा की तरह होगी, व्यर्थ नहीं होगा मन में, तो हम उनके मन के भाव को पढ़ करके तुरंत ही जो भक्ति मार्ग में गायन है ना, तथास्तु का, बस उस आत्मा को सिद्धि का अनुभव होगा। अरे इन ब्रह्मा कुमार के पास, इन ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास आने से मेरे इतने वर्षों की आस पूरी हो गई, आज वो अनुभव करेंगे, और तब ही बाबा की ये प्रत्यक्षता होगी, और बाबा ने ये प्रत्यक्ष करके अंत समय में दिखाया, और साथ में बाबा का अंतिम जो हमने अनुभव किया वो ये कि उस दिन बाबा को एक बार भी मुरली में न खांसी आई न तकलीफ हुई, क्योंकि ये शरीर का हमारा अंतिम पेपर है, तो ये अंतिम पेपर को हमें पार करना ही है। बाबा ने पार किया, मामा ने पार किया, सबने पार किया, हमें भी पास करना है, लेकिन तब पास कर सकेंगे इसे सक्सेसफुली जब योग बल जो है हमारे कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। शरीर में अंत तक बहुत व्याधियां आनी है, बाबा मामा को कम नहीं आई, लेकिन उनका स्थिति ऐसी थी कि वो व्याधि से परे हो करके, और ब्रह्मा बाबा का भी देखा, अंत में एक बार भी न खांसी आई न कोई तकलीफ हुई, और बाबा सबसे मुरली चला के अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये कह के क्लास से गए, और दादी जी के हाथ में हाथ, और बाबा ने देह त्याग किया। हमने उस दिन क्या देखा, हम छत पर टहल रहे थे, बाबा ने एक दिन पहले ही बोला था कि भाई जब यहाँ आते हो तो थोड़ा उस बेहद में आते हो, तो मैंने देखा जमुना प्रसाद भाई तेजी से निकल रहे हैं, और बहन जी की ड्यू परमिशन, तो ये देखा वो बड़ी तेजी से जा रहे थे, कहाँ जा रहे हो, भाई बाबा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दादी जी ने कहा डॉक्टर को बुला के ले आओ, तो वो डॉक्टर को बुलाने गए, मैं भी नीचे आया, मैं भी नीचे देखा तो बाबा का कमरा है ना, तो पहले ये कमरा इतना बड़ा नहीं था, जितने तक पलंग पड़ा है उतना छोटा था, और पीछे से ही एक रास्ता था, मैं भी पीछे जाके खड़ा हो गया, देखा बाबा तो चारपाई पर बैठे हैं, दादी जी के हाथ में हाथ, और बाबा जैसे दृष्टि शक्ति बाधा दी जी को, अब हमें तो अंदर जाने की हिचक थी, मतलब इच्छा थी लेकिन जा नहीं सकते थे, क्योंकि दादी और बाबा नैन मुलाकात जैसे बाबा, और ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था किसी ने भी कि बाबा शरीर छोड़ देगा, ये अंतिम दृश्य है, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था, तो हम तो चले आए, लेकिन जैसे ही डॉक्टर आया, फिर गए डॉक्टर ने चेक किया, और वो करके लौकिक रीति से जैसे सर्टिफिकेट देते हैं वो सब किया, तो शरीर तो हम सबको भी छोड़ना है, लेकिन ब्यूटी तब है जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, सबसे अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसे ही हम सब भी शरीर छोड़े अपनी इच्छा से छोड़े, और वो तब होगा जब हमारा जो जो पुरुषार्थ की बात बताई ना, वो बाबा के अनुरूप होंगी, जो जो देखा, और उसके अंदर भी एक विशेष बात, जो एक तो भारतीय संस्कृति ने जो जो बोला है ना, उस वो हमारे जीवन में हो, कैसे बाबा छोटी चिड़िया वो तो आपने सुना होगा, मैंने बताया कि भोग है, भोग के दिन जब संदेशी आती थी भोग लेके, भोग लगा के जाती थी, फिर बाबा भोग की थाली, भोग का डिब्बी लेके अपने हाथ में, जो भी भोग बना था, हलुआ या बूंदी लेके, बस आओ बच्ची, आओ आओ बच्ची। तो हम सब देखते थे बाबा किसको बुला रहा है, बच्ची कौन, आओ बच्ची आओ। तो दूर से एक छोटी सी बुलबुल, छोटी सी चिड़िया फुदकती हुई, कू 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 करती हुई आती थी बाबा के पास पीछे के दरवाजे से, पहले नीचे, फिर मेज के ऊपर, फिर बाबा के हाथ के पास, और फिर जैसे थोड़ा देखा बाबा की तरफ, और फिर वो भोग खाती थी। बाबा भी बड़े प्रेम से स्नेह से खिलाते थे। तो ये कहने की बात नहीं है, बाबा का सब ही गाय भैंस के पास भी जाते थे, गाय पाली हुई थी कई गाय, अभी समय नहीं है, सांप निकला था, बाबा ने कैसे उसको भी बिना नुकसान दिए जंगल में छुड़वाया। तो भाव क्या है, हमें अनुभूति होनी चाहिए वसुधैव कुटुंबकम की, तब हम वसुधा के मालिक बनेंगे, विश्व महाराजन विश्व महारानी तब बन सकेंगे। इसी के साथ ही एक बार जी से माफी मांगते हुए हम ये बाबा का ये समाप्त करते हैं, और हम समझते हैं कि इस धरनी पर आप आए हो तो यही एक संकल्प लेके जाएं पक्का, जिस संकल्प से ब्रह्मा बाबा भी बने, बाबा मुझे कर्मातीत बनना ही है, जो बड़ी दादी का भी संकल्प था, हर हालत में आपको मुझे माला का मणका बनाना है, विजय माला का, और बाबा वी आर मेड फॉर ईच अदर, ब्रह्मा बाबा बाप दादा हमारे लिए, हम बाबा के लिए, न तो बाबा को हम जैसे बच्चे मिलेंगे, न हमें ऐसा बाबा। ओम शांति, ओम शांति।
वो दिन
मम्मा बाबा के संग के अनुभव से अवश्य सभी को लाभ मिला होगा। अपना अमूल्य समय निकाल कर भ्राता जी आए और आप सबको लाभान्वित किया। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।